वास्तविक अर्थ क्या बनता है कि हजरत मोहम्मद का भगवान अल्लाह कहता है मोहम्मद जी को कि ए पैगंबर, तू उससे जो मैं कह रहा हूँ इन बातों पर विश्वास करना, इन कुरान की दलीलों पर विश्वास रखना और इन काफिरों की बात मत मानना जो कहेंगे कबीर परमात्मा नहीं है, और उनके साथ तू संघर्ष करना कबीर के नाम पे, कबीर के लिए तू संघर्ष करना, लड़ाई नहीं करना। संघर्ष क्या होता है कि एक कहता है कि मैं तो नहीं मानता कबीर परमात्मा है, लेकिन आपने भी नहीं मानना उनकी, क्योंकि आप इसके इसको आधार मानकर ये मत मानना कि वो ठीक करे, इसका ये अर्थ बनता है। और ये वही है वो कबीर परमात्मा जिसने छह दिन में सृष्टि रची, सातवें दिन तख्त पर जा विराजा। अब ये प्रमाण इसके साथ इससे आएगा आपको, ये वही कुरान शरीफ और ये सूरत फुरकानी 25, ये हिंदी देखना। तो ए पैगंबर, तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान शरीफ की कुरान की दलीलों से उस कबीर के लिए संघर्ष करना, बस बड़ा जोर नहीं, संघर्ष करना, जिहादन कबीरन, ये देखो इधर, जिहादन कबीरन, उस कबीर के लिए जिहाद करना, संघर्ष करना, जिहाद माने संघर्ष। आगे देखो, अब 53 में क्या कहा है कि ये वो परमात्मा है जिसने छह दिन में सृष्टि रची, सातवें दिन तख्त पर जा विराजा। अब यहाँ देखो 53 में, पहले संस्कृत ये उर्दू देखो, ये इनकी लिपि, ये देखो इधर, इसमें क्या लिखा है 58, अब 59 तक दिखाएंगे आपको। यहाँ 58 में इवादही कबीरा, यो मिसप्रिंट हो गया, यो कबीरा है, इवादही कबीरा, इबादत माने पूजा, इबादही माने पूजा के योग्य वो परमात्मा कबीर है जिसका नाम कबीर कहो कबीरा कहो, युग कबीरा। और यहाँ फिर बिही कबीरन, उस वो परमात्मा कबीर है, युग कबीरन लिख दिया, ये भी गलती से लिख गया, वो कबीरन है, ये मिसप्रिंट हुआ इनसे। तो अब ये तीन नाम इकट्ठे चार बार लिखे इस आयत में कबीर नाम, अब क्या 53 में लिखा है कि ये वो परमात्मा है और ये वही है, ये कबीर वही है जिसने दो दरियाओं को मिला चलाया, एक पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और खारी कड़वा दोनों को एक आड़ और मजबूत रोक बना दिया। ये परमात्मा वो है जिसने पृथ्वी के अंदर कहीं मीठा कहीं खारा पानी भर दिया, किसी बढ़िया कलाकारी कर रखी है, और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसकी उसे साहिब नसब यानी बेटा बेटी ससुराल वाला यानी दामाद वो बनाया, और तुम्हारा प्रतिकार हर चीज को करने में शक्तिमान है यानी सर्वशक्तिमान है वो भगवान। गीता बोल या कुरान से बोलने वाला कोई और है, सुनाने वाला को कह रहा है कि वो परमात्मा तीसरे नंबर का वो कबीर है, कोई और है। वो सबका वो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ करने होते हैं, और अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो और न उनको नफा पहुंचा सकते न नुकसान, अर्थात ये देवता देवता पूजे हैं ना पितर पुत्र सरासुर, ये ना तो इनको फायदा दे सकते और ना इनको लाभ, ना ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्म पर ब्रह्म तक कोई भी लाभ हानि नहीं कर सकते, वो तो परमात्मा कोई और है अल्लाह के सिवा। हाँ, फिर वो और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़ रहे हैं अर्थात उसकी भक्ति नहीं करते और पूजा करते हैं। ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और अजाब से डराने के लिए भेजा है, ये भेजने वाला तो कोई और अल्लाह है और तीसरे नंबर के और अल्लाह की तरफ ये संकेत कर रहा है। और अब देखो, इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे उस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार के लिए पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। ए पैगंबर, 58 में देखना वो कबीर आया था, ए पैगंबर हजरत मोहम्मद, उस जिंदा जो तुझे जिंदा रूप में मिला था ना इन चेतन ने अपनी सोच से, ये नहीं ये सही है, वह उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, अर्थात उसे कोई नहीं मार सकता, जैसे गीता जी के दूसरे अध्याय के 70वें श्लोक में अपना भी सुना था, और उसकी तारीफ उसकी उस और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करो, उसकी महिमा पवित्रता बयान करते रहो, और वो अपने बंदों के गुनाहों से यानी पाप कर्मों को काट देगा, वो खूब जानता है खूब खबरदार है। 58, अब इसने ना यहाँ क्या कर दिया, काफी कर दिया, बड़ा उसका काफी, कबीरा का अर्थ काफी कर दिया, गोलमोल करते रहते हैं ये, इनको क्योंकि ये मानते निराकार है परमात्मा अपनी थूरी थे, इसलिए इस दृष्टिकोण से कुरान शरीफ का टीका कर दिया। कुरान शरीफ की मूल भाषा बिल्कुल ठीक बता रही है, वो अल्लाह जो है वो कबीर खूब खबरदार आपके गुनाहों से, वो कबीर ये लिखना था, वो कबीर अपने बंदों के गुनाहों से खूब खबरदार, कबीर लिख देते बस। आगे देखो, जिसने आसमानों और जमीन के बीच जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया फिर तख्त पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह कबीर, यहाँ कबीर लिख देते, वो अल्लाह कबीर, वो भगवान कबीर, वो साहेब कबीर, वो देव कबीर, वो परमेश्वर कबीर, वो अकाल मूर्त कबीर, यहाँ कबीर लिख देना था, सारा झंझट मिट जाता। अब लिखा जाएगा ये, आगे देखिए, रहमान है और उसकी खबर किसी बाखबर इलम वाले से पूछ देखो, जैसे पवित्र गीता जी बता रही है कि मैं नहीं बता सकता अर्जुन, उसको तो तत्वदर्शी संतों के पास पूछ, उस परम पिता के बारे में मैं नहीं जानता। अर्जुन का तो ये कह रहा कि उसकी खबर, तो उसकी खबर किसी बाखबर माने तत्वदर्शी संत से पूछो, भाई मैं नहीं जानता। अब आपके सामने क्या सिद्ध हो गया कि ये परम कबीर वही है, इसमें नाम कबीर आ गया और उसमें सेकंड कर दिया कि वो मनुष्य जैसा है जिसने 6 दिन में सृष्टि थी 7वें दिन तक पदा विराजा, अरे इसमें सेकंड हो गया कि वो कबीर है और जा बैठा तो इसका मतलब आकार में है और ये इसको निराकार बताए। अब आइए पवित्र वेदों में, अब दोनों पवित्र धर्मों ने के पवित्र शास्त्रों ने तो सिद्ध कर दिया परमात्मा आकार में है, मनुष्य जैसा है और उसका नाम कबीर है, और अब आपको पवित्र वेद यही प्रमाण देंगे कि वो परमात्मा कबीर है, वो सह शरीर है, मनुष्य जैसा है। और अभी तक के महर्षियों ने जिन्होंने अपनी सोच से जो सोचा जितनी उनकी उपलब्धि हुई, वेदों को सत मानने वालों ने भी परमात्मा को निराकार ठोक कर लिख दिया। उनमें सबसे पहले कौन महापुरुष है, आज मैं थोड़ा सा और प्रकरण दिखाता हूं कि ये कुरान शरीफ जो है, हजरत मोहम्मद को एक जबराइल नाम के देवते ने जबरदस्ती उसको डरा धमका कर भयभीत करके और जब अपना काल तक का ज्ञान बढ़वा दिया। ये भी देखो, वो दूसरा नाम दस्य देखिएगा, ये जीवनी है हजरत मोहम्मद। अब इसे पता लगेगा कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारा भगवान कौन है। आज ना तो हिंदू को मालूम वास्तव हमारे प्रभु कौन है, ना मुसलमान को, ना ईसाई को और ना सिख को। अब ये शास्त्र, ये हमारे शास्त्रों को अपनों को प्रथम लेकर फिर चलना होगा। किसी भी भगवान के ज्ञान आज तक किसी ने हुआ है तो कोई शास्त्र से हुआ है या वो परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया, बस तीसरा कोई नहीं बता सकता। ये देखिएगा, आफ्ताब आलम सादिक हुसैन सरंदवी, नीचे देखिए ये कहां से प्रकाशित है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाह की जिंदगी के हालात, यहां देखिए, हाँ वही है, एजेंट सेल एजेंट है जसीम बुक डिपो उर्दू बाजार जामा मस्जिद दिल्ली, इसके 28 नंबर पृष्ठ पे, अरब का चमकता सूरज, नीचे देखियो। अब मैं थोड़ा मौखिक बताऊंगा आपको, फिर ये जल्दी समझ में आओगी। क्या बताया इसमें कि वैसे तो हजरत मोहम्मद की थोड़ी सी जीवनी सुना दूं, इनके शास्त्र आधार, ये इनके पिताजी का नाम श्री अब्दुल्ला था, अब्दुल्ला जी की मृत्यु उसमें हो गई थी जब ये मां के पेट में थे, गर्भ में थे हजरत मोहम्मद जी, और जब 6 वर्ष के हुए तो मां भी मर गई। कति इतनी बुरी जिंदगी इस महापुरुष की अगर देख लेता आदमी की आंखें में आंसू नहीं छूट खत्म हो। फिर इन्होंने, इनका ब्याह हुआ किसी विधवा से, एक खजीदा नाम की औरत थी, वो अच्छे घर की लड़की थी और उसका पति गुजर गया था, फिर वो ये 25 वर्ष का था, वो 40 वर्ष की थी, फिर इनका ब्याह हुआ। विवाह में फिर गौ के बाद, फिर होने के बाद इनके 7 संतान हुई, 4 लड़की 3 लड़के, और इन्हीं के सामने तीनों लड़कों की मृत्यु होगी, इनके जीवन जीवित जीते जीते तीनों लड़कों की मृत्यु होगी। अब एक विचार करना, जिस महापुरुष के दिए हुए आदेशों पर आज पूरा मुसलमान इस्लाम धर्म आश्रित है और वो स्वयं दुखी रहे बेचारे, जिनके जिस बाप के आगे तीनों बेटे मर जाए उस तो दुखी इस परिवार इस धरती बाद में नहीं हो सकता, चाहे कोई कितनी बात बनावे। ऐसे ही जैसे हम भगवान श्री राम और कृष्ण के ऊपर आश्रित रहे अभी रहा करते थे, अब श्री राम का जीवन देख लो जैसे बुरा जीवन शायद किसी इंसान का हो। जब ब्याह हुआ ब्याह उनते वनवास हुआ, वनवास में सीता रण और फिर 12 वर्ष युद्ध किया रावण के साथ, फिर सीता वापस लाए, करोड़ों आदमी मर गए उसमें, वापस लाते गर्ते निष्कासन कर दी और आजीवन पुत्र कहां पत्नी कहां और वो भगवान कहां। इससे बड़ा कहर किसी इंसान पर नहीं टूट सकता जो राम पर टूटा, क्योंकि ये काल के पैगंबर थे, इस निराकार के भेजे हुए थे और ये कर्म दंड इनके कट नहीं सकते थे, कितनी बात बना ले। और श्री कृष्ण ने देख लो कैद में जन्म हुआ, मामा दुश्मन हो गया और फिर ना जाने किस के जुलम हुआ, फिर किन किन गेला लड़ाई हुई और अंत में तीर के से तीर मार कर उनकी मृत्यु हुई, हत्या हुई और पूरा उनके उनके सामने उसके बेटे भी पोते भी सारे आपस में लड़कर मर गए, पूरा कुल विनाश भगवान श्री कृष्ण का सामना हो गया, कोई बचाव नहीं हुआ। ये ब्रह्म तक काल तक के भगवान है, इन्हें क्या अवतार बनकारे है। ऐसे हजरत मोहम्मद भगवान शिव के गण थे, शिव के लोक से आए थे और पिछली हंस आत्मा थी, पिछले ऋषि रहे थे किसी जन्म में और वो अपने पुण्य कमाई खाली जिसी थी, पुण्य भी भोगे पाप भी भोगे। अब जब ये हजरत मोहम्मद इतने दुखी रहे तो उनके अनुसार बताएगी साधना में बता कैसे सुख हो सके, ये हमने फिर विचार करना होगा। आप देखिएगा इसमें क्या बताया है कि हजरत मोहम्मद अपनी पत्नी को ये क्या करते थे, क्योंकि पिछले जन्म के ऋषि थे, पहले हमारे पूर्वज अलग नहीं थे, आज 3000 वर्ष पहले 3500 वर्ष पहले ना कोई हिंदू था ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई, हम सब एक, हमारे पूर्वज एक थे और सब पहले ऋषि थे जो शास्त्र अनुकूल साधना किया करते, चाहे कोई मजदूर था चाहे कोई बंगी था कोई भी था, सब भक्ति किया करते प्रभु को आश्रय में लेकर, सत भक्ति वेदों अनुसार जैसा उनको जैसे संत ऋषि मिले थे वो वेदों अनुसार साधना सही बताया करते। और द्वापर तक कोई ये पंथ नहीं बना था ना कोई मजहब बना था, क्योंकि वो सब संत वेदों को पढ़कर एक जैसी व्याख्या करा करते। अब मनमुखी व्याख्या मनमुखी साधना मनमुखी थ्योरी अब कलयुग में बनवा दी इस काल ने, इसलिए मजहब पर मजहब बन गए, ये पंथा व पंथ बन गए, भगवान एक उसका पंथ एक का होगा दो हो नहीं सकते। तो ऐसे क्या कर, ये पिछली संस्कारी अनुस्थापन मंजी और भक्ति की कसक थी, एक गुफा में बैठकर अपने आप मनमुखी साधना करते हैं, जैसे हम विक्रय करते हैं हनुमान पुजारी था दास, पहले गीता जी का रोज पाठ किया करता था, मनोहनुमान का मंगलवार का व्रत किया करता था, श्री राम कृष्ण के गुण गाया करता, श्याम जी की पूजा करते थे, क्योंकि अब पिछले जन्म की कसक थी वह डट नहीं रही थी और प्यास बुझ नहीं रही थी, रास्ता ठीक नहीं मिल रहा था। तो ऐसे ही जाकर एक गुफा में साधना कर रहे थे, काफी दूर बैठे रखते, दो दो तीन दिन भी बैठे रहते उसमें। एक दिन कहते हैं जबराइल नाम का एक देवता आया, ये बताते हैं कि अमेरी आकर उसने दबोच लिया, ने पकड़ लिया कसी की तरह, इतना दबोच दिया कि मरने को हो गया, मैं घबरा गया, फिर छोड़ दिया, कहने लगा पढ़ो। तो हजरत मोहम्मद जी कहते हैं मैं पढ़ना नहीं जानता, कैसे पढ़ू, फिर दबोच दिया कसूती तरह, फिर छोड़ दिया, फिर मैं घबरा गया, कहता पढ़ो, फिर ये उतर दिया कि मैं तन पढ़ू मैं पढ़ नहीं सकता। तो वो फिर फरिश्ता चला गया, बाहर निकला गुफा से, कहते सारा कांप रहा, घर न आ गया, अपनी पत्नी से कहा मुझे कंबल उड़ा दो कंबल उड़ा दो, कंबल उड़ के लेट गया। काफी देर के बाद उसकी पत्नी भी घबराएगी क्या बात होगी, फिर उठा कहने लगे आज तो मेरे साथ ऐसे ऐसे बनी, अब क्या करूं मैं। कुछ दिनों के बाद किसी एक वृद्ध से मिले, उसने बताया कि भी ये तो ऊपर से अपने जैसे ईसा जी के पास भी ऐसे आया करते थे, इसराइल के पास भी ऐसे फरिश्ते आया करते, ये काल के भेजे हुए इस निराकार के इस ब्रह्म के ज्योति निरंजन के भेजे हुए वो गलत ज्ञान प्रचार करने के लिए, अपने तक के ज्ञान को, वो ज्ञान तो बताता पूर्ण परमात्मा का कि और परमात्मा और भक्ति देते था अपने लेवल की महिमा, बेशक उस परमेश्वर की गाते रहे और भक्ति देता अपने लेवल की, इसलिए इसके जाल तो बाहर निकले को नहीं। अब तो ये फिर जबरदस्ती इसको ये कुरान की उतरने लगी, कभी तो कोई इसका महाप्रवेश करके जैसे भूत बढ़कर काल फरिश्ता अंदर बढ़कर बोला, जैसे आजकल ये ब्रह्मा कुमारी पंथ चल रहा है, ये इसमें दो बहनों में दो भूत पड़े आके और वो फिर व्याख्या करते हैं, काफी देर तक उनका वह बेहोश हो जाती है। अब ये कुरान जैसे मुसलमान धर्म बना था ऐसे ये बेसलेस आधार पर ये ब्रह्मा कुमारी पंथ हत्यार होने लग रहा है। अब दिखाता हूं आपको, ये वही है आफ्ताबे आलम और ये जीवनी हजरत मोहम्मद जिंदगी के हालात। प्रश्न नंबर 28 पे नीचे देखो, आपने हजरत मोहम्मद की तरफ संकेत है, आपने खजूर की चटाई पर लेटकर फरमाया मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। हजरत खदीजा इनकी धर्मपत्नी तुरंत कंबल उड़ा दिया और उनके करीब बैठ गई और चिंता में डूब गई। लेकिन हजूर सल्लल्लाह कंबल ओढ़े खामोश लेटे थे और आपसे हर बात मालूम करने की हिम्मत नहीं थी। थोड़ी देर बाद आपने कंबल उतारा और बैठे, हजरत खदीजा की जान में जान आई। उन्होंने पूछा कि अब आपकी तबीयत कैसी है? हजरत सल्लल्लाह यानी हजरत मोहम्मद ने फरमाया अच्छी है। फिर कहा खदीजा आज एक अजीब बात हुई। खदीजा ने हजूर के चेहरे की को गौर से देखा और पूछा मेरे सरताज क्या वाकिया हुआ है? आपने फरमाया कि मैं गुफा में बैठा था कि खूबसूरत सल्स पाक कपड़े पहने हुए जाहिर हुआ। मैं बेअख्तियार उसकी इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया। उसने मेरे पास आकर कहा पढ़ो इकरा पढ़ो। मैंने कहा मैं पढ़ नहीं सकता। उसने मुझे पकड़कर भींचा डराया कसूती तरह और कहा पढ़ो। मैंने फिर कहा यही जवाब दिया। फिर तीसरी बार फिर मुझे पकड़कर जोर से भींचा और फिर छोड़कर कहा हुकरा यानी इनकी संस्कृति देखो आगे यानी अपड खुदा के नाम से जिसने कायनात को पैदा किया, जिसने इंसान को गोश्त के लोथड़े से पैदा किया। पढ़ तेरे रब बड़ा करीम है, वह जिसने इस इंसान को कलम से के जरिए से इलम सिखाया, वह जिसने इंसान को बातें सिखाई और उसे मालूम नहीं थी। मैं डर सा गया। वह सख्त चला गया। खदीजा यह अजीब कहानी है बात नहीं है, ऐसे ये जबरदस्ती इन ऐसे जबरदस्ती इनको जो है इस काल ने हजरत मोहम्मद को फरिश्ते के माध्यम से या अपने आप को भी प्रवेश करके इसमें जैसे भूत की तरह आके इसमें सारा प्रमाण दिया है कि कैसे आयत उतरी। ये भी देखो देखो हम भक्ति जब करेंगे जब हमारा फैसला हो लेगा वो कौन सी करे। एक कहता ये नाम जपो, दूसरा कहता ये जपो, को का भगवान निराकार है, को का साकार है, को का मनुष्य गुरुजी भगवान है, आज्ञा निराकार है। ये तो दंत कथाएं हैं क्योंकि इन शास्त्रों से नहीं मिलती। इसमें देखिएगा ये कुरान कैसे उतरी। ये कैसे बनी कुरान, ये देखो यहाँ लिखे 6 नंबर पृष्ठ पे मुकदमा। कुरान मजीद के उतरने और संग्रह संकलन से के हालात देखिएगा। कुरान मजीद एक पवित्र किताब है, वह अंतिम नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई। अब यहाँ देखो नीचे देखो यहाँ कैसे लिखी गई। पूरी पूरी सूरतें शरीत में वह कहते हैं उल्मा इन वह के विभिन्न तरीकों से हदीसों से पेश किए हैं। फरिश्ता वह लेकर आए यानी संदेश लेकर आए और एक आवाज घंटी जैसी मालूम हो, यह सत्य थी। अनेक हदीसों से साबित है और वह किस्म वह की सभी किस्मों से सख्त थी। बहुत कष्ट नबी सलल को होता था। और दूसरी ये है कि यहाँ तक कि आपने फरमाया कि जब कभी कभी ऐसी वे आती थी तो मैं समझ जाता कि अब जान निकलने वाली है, निकल जाएगी। और दूसरा तरीका था, एक तो ये आती थी कि इसको दिखाई नहीं देता था, घंटी सी बजती थी, इसके अंदर प्रवेश कर जाता था और उसकी अकड़ जाता था, जबान खुल जाती थी, फिर बोलना शुरू कर देता था, फिर लिखने वाले लिखते थे। और दूसरी ये है कि फरिश्ता दिल में कोई बात डाल दे या फरिश्ता आदमी के रूप में आके जैसे जबराइल आया था बात करे और फिर किस्म बहुत आसानी से इसमें ये तो आसान थी इस ये किस्म बहुत आसान थी, इसमें कष्ट नहीं होता था। जबकि इतना डरा डरू दिया वो तो कष्ट थोड़ा था, लेकिन वो जो अंदर प्रवेश करके भूत की तरह बोल रहा था वो कष्ट ज्यादा था। اللہ تعالیٰ اپنے ہی حالت میں کلام فرمائے، یہ قسم بھی صحیح حدیثوں میں ثابت ہی، یعنی اس کا بھگوان بھی کئی بار بول رہا ہے اوپر آ کر آکاش وانی کر، اللہ تعالیٰ جس کا وہ کہتا ہے نا حضرت محمد سن لے تو میں تیرے کو بتاؤں، تو یہ اللہ بول رہا تھا اس کا خدا، جس نے یہ کال بھی بولتا جسے گیتا بول رہا تھا. اب یہ کہنا جاتا تھا دا صاحب کو کہ ایسے یہ مذہب بن گئے. اب یہ برما کماری پنتھ کیا ہے یہ دکھاؤں گا آپ کو ان کے پرمان سامنے. ایک لیکھ راج نام کے سرما زوری تھے کلکت بمبئی میں، اور اس میں ایک کوئی پتر آتمانے لگی اور وہ لگ گیا بولن، اس کی لکھن لگ گئے، پھر وہ مر گیا، پھر ایک اس لڑکی مان لگ گیا. ہو اب وہ اس لڑکی، اب کہتے ہیں وہ جو پتر آتا تھا وہ اس لیکھ راج میں، لیکھ راج کی آتما پھر اس برما ایک لڑکی میں کماری میں. اب وہاں کیا بتاتے ہیں ماؤنٹ آبو میں کہ دو لڑکیاں سے بیٹھ جاتی ہیں جوان کماری، اور تھوڑی دیر کے بعد نڈال ہو جاتی ہیں، پھر وہ ایک دم کڑک کا بولتی ہیں، ان کی آواز میں بھی فرق ہوتا ہے، وہ بولنا طریقہ بھی اور ہوتا ہے، بڑے جواب دیتی ہیں. تو وہ پریت آتما ہے، کوئی پیچھے غلط سادھنا کر کے وہ سادھک اور بھی پتر بنے ہوئے ہیں، اور وہ ان میں پرویش کر کے، اور وہ جہاں تک انہوں نے اپنی کوئی سادھنا کی تھی اپنے جیون کی پہلے، وہ بھوت پریت، تو وہی جہاں تک کہ اس کا انوبھو جیسے سمادھی لگا کر کوئی چیز دیکھا کرتے، وہ اسی کو آپ بتا رہے ہیں. اور پھر کیا کہتے ہیں، یہ تو گیتا بولی تھی نا بھگوان نے، وہی بولا اس ماں کے. اب گیتا جس نے بولی تھی، پھر گیتا بدل تھوڑی جائے گی، اب وہی بولنی چاہیے تھی جو پہلے بولی تھی. تو اب یہ ساری خیاس ہم نے بھگتاتماؤں نے کرنی پڑیں گی، کیونکہ کال نے یہ جال گہرا پھیلا دیا. اب میں جو بتانا چاہتا تھا، اب آئیے گا وید کیا بتاتے ہیں کہ پرماتما ساکار ہوا نراکار. اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے ویدوں کو لینا ہوگا، اور ویدوں کا آج کل جو سب سے زیادہ ویدوں کے بارے میں جانکار مہاپرش مہرشی دیانند سرسوتی جی کے بارے میں جانا جاتا ہے کہ انہوں نے ویدوں کو جیسا جانا اور سمجھا شاید آج تک کسی نے نہیں سمجھا. ہم انہی کے آدھار پر چلیں گے، کیونکہ ہمیں تو انجان ہے جان نہیں. ان مہاپرشوں کے ہی لکھے ہوئے لیکھوں کو پھر شاستروں سے ملائیں گے، جہاں تک ان کے لیکھ ٹھیک ہیں شاستروں سے ملتے تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھا دھن ہے، اور شاستروں سے نہیں ملیں گے تو پھر ہم اس کو پھر سوچیں گے کہ یہ کیوں نہیں ملے، تو اس کو پھر آگے اس کا وہ کہاں سے کیسے ملیں گے. تو ان کو پھر کبیر صاحب کی وانی سے، ان مہاپرشوں نے جنہوں آنکھوں دیکھا پرماتما کو، ان سے اور ویدوں کا صحیح میل ہوتا ہے، تو پھر ہم نے یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ وہ صحیح ہے جو ویدوں سے مل رہا ہے، اور جو ویدوں سے نہیں مل رہا تو پھر وہ پورا نہیں. اب دیکھیے گا ستیار پرکاش میرے سیدھا. اب یہ کیا چیز ہے ستیار پرکاش کیا ہے؟ یہ جیسے اپنشت ہوتے ہیں، اپنشت یہ اپنشت کیا ہوتے ہیں؟ جس مہاپرش نے، جس رشی نے اپنی سادھنا بھگوان کو جیسا سوچ کر، جس منتر سے جیسی سادھنا کی، اور اس نے انت سمے میں جیسا بھی اس کی اپلبدھی ہوئی، اپنے سارے جیون کی جو اس کے انوبھو تھا ایک الگ سے بک بنا دی، اس کو اپنشت کہنے لگے. تو یہ جو شاستر ستیار پرکاش ہے، یہ آریہ سماج کے وچاروں والے ویکتوں کے لیے اپنشت بن گیا. اب جیسے جن مہرشیوں نے اپنشت بنا دیے تو ان کے انویائی اپنشت پڑھتے رہے، ویدوں کو نہیں دیکھا. کیوں نہیں دیکھا؟ انہوں نے یہ سوچا کہ ہم اتنا نہیں سمجھ سکتے جیسے ہمارے وہ رشی سمجھ گئے، اس لیے ویدوں کو تو چھوڑ دیا اور اس پہ آدھارت ہو گئے جو انہوں نے اپنی سوچ کے شاستر بنا دیے. تو یہ بالکل ہونا بھی سوبھاوک ہے اور اتنا وشواس بھی ہونا چاہیے. اب یہ کوئی سمے دیا مالک نے، آپ چیتنا دی اس داس کو کہ ایک بار پھر دیکھو ان کو، یہ کہاں تک بتاتے ہیں اور وید کہاں تک بتاتے ہیں. تو اب پھر دیکھیں گے، وید کو کسی کی پرسنل پراپرٹی تھوڑی ہے، یہ تو نجی سمپتی نہیں کسی کی. شاستر تو کبھی بھی اس پر جو نا انویشن ہو سکتی ہے، کبھی کھوج کر سکتے ہیں. آج پھر ہو رہی ہے، اب دیکھیے گا. ات ستیار پرکاش ہے مہرشی دیانند سرسوتی ویرچت سوامی ویرچت ہے ویدک پستکالیہ دیانند آشرم کے سرگند اجمیر. ستیار پرکاش ہے، نیچے دیکھو مہرشی دیانند سرسوتی ویدک پستکالیہ دیانند آشرم کے سرگند اجمیر. اب اس میں پرتھم سمولاس میں ہی کیا لکھا ہے کہ سب سے بڑا ہونے سے پربھو کا نام برہم ہے. یہ دیکھیے گا مہرشی دیانند सरस्वती, और ये है सत्यार्थ प्रकाश है प्रथम समुल्लास है। ये यहां देखो ओम, इस ओंकार शब्द से ये परमेश्वर, वह परमेश्वर, परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है, क्योंकि इसमें ए उ और मैं तीन अक्षर हैं, इनसे मिलाकर ओम बनता है। समुदाय इस एक से परमेश्वर के बहुत नाम आते हैं, जैसे आकार से अग्नि, विराट अग्नि, विराट भी परमेश्वर का नाम है और अग्नि भी उसी का नाम है। अग्नि शब्द याद रखना, क्योंकि वेदों में आपको अग्नि काम आओगे। विश्व आदि, उकार, हरणा, गर्भ आदि, नीचे देखो। अच्छा, यहाँ ऊपर देखिएगा, हाँ यहाँ आइए, ये प्रथम समुल्लास, ये प्रथम समुल्लास, और यहाँ देखो ओम आदि नाम सार्थक हैं। ओम खम, यहाँ देखिए आगे, रक्षा करने से ओम, आकाशवत व्यापक होने से खम, सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। ये ब्रह्म को सबसे बड़ा भगवान मानते हैं, ब्रह्म सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। आगे देखो, अब यहाँ आइएगा, और स्व प्रकाश होने से, स्व प्रकाश का अर्थ क्या होता है, परमात्मा के शरीर से स्वयं प्रकाश निकल रहा है, स्व प्रकाश होने से अग्नि, इसलिए अग्नि नाम भी परमेश्वर का। स्व प्रकाश होने से अग्नि, विज्ञान स्वरूप होने से मनु, और सबका पालन करने से प्रजापति, परमेश्वर वाला होने से इंद्र, सबका जीवन मूल होने से प्राण, निरंतर व्यापक होने से परमेश्वर का नाम ब्रह्म है। आगे देखो, आगे भी लिखा है कि सृष्टि की रचना करने, सब जग के रचने के कारण ब्रह्मा, सर्वव्यापक होने से विष्णु, दुष्टों को दंड देने से रुद्र, मंगलमय और सबका कल्याण में करता होने से शिव, ये आदि नाम, इसमें अग्नि शब्द याद रखना, और विष्णु भी प्रभु का नाम ही है, ये याद रखना। आगे देखो, यहाँ फिर अग्नि शब्द पर बात आती है करके, यहाँ देखो, इस धातु से अग अनि गतार्थक धातु है, इनसे अग्नि शब्द सिद्ध होता है। और आगे देखो, जो ज्ञान स्वरूप सर्वज जानने प्राप्त होने, जब वो निराकार है तो प्राप्त कैसे होंगे, प्राप्ति होने, पूजा करने योग सब, और इससे परमेश्वर का नाम अग्नि है। अग्नि माने परमेश्वर समझना, जहां अग्नि शब्द लिखे। अभी इन्होंने, इनसे किसी ने पूछा, सबसे पहले 190 प्रश्न दिखाते हैं आपको, कि परमात्मा को आप साकार मानते हो निराकार, महर्षि जी उत्तर देते हैं निराकार मानते हैं। ये सप्तम समुल्लास 190 पृष्ठ, नीचे देखिए, ईश्वर असाकार है व निराकार, उत्तर निराकार महर्षि जी का। और फिर 212 पर फिर देखिए, ये ऊपर ये सप्तम समुल्लास 212 पृष्ठ पे, परमेश्वर को आप निराकार मानते हो साकार निराकार मानते, उत्तर महर्षि जी का कि निराकार मानते। आगे देखो नीचे, इनसे पूछा कि परमात्मा ने वेदों को किसने बोला, कि ब्रह्म ने बोला। अब यहां ऊपर प्रश्न चल रहा है, देखिएगा कि प्रश्न जब ऊपर देख, जब जब निराकार है तो वेद विद्या का उपदेश बिना मुख के उर्ण उच्चारण कैसे कैसे हो सकेगा, भगवान निराकार है तुम कहते हो वेद बोले, तो कैसे बोले भगवान ने वेद। यहां देखो नीचे उत्तर, यहां आओ, जैसे जीवों को अंतर्यामी रूप से उपदेश किया है, किंतु केवल दूसरों को समझाने के लिए उच्चारण किया जाता है, जब परमेश्वर निराकार सर्वव्यापक है तो अपनी विद्या का उपदेश जीव सत स्वरूप, जीव सत माने भूत की तरह दूसरे की आत्मा में अंदर जाकर, जीव सत, सत माने स्थापित होकर जीव की तरह, पता ना लगने दे कौन बोले, जैसे श्री कृष्ण में काल बोल गया अंदर प्रवेश करके, यही ब्रह्म और गीता बोल दी। क्या लिखा कि जीव सत स्वरूप, जीव सत माने जीव की तरह, अंदर जैसे जीव बोला करे ऐसे भूत की तरह, एक आत्मा में प्रेत आत्मा बढ़ जाती है दूसरे के शरीर में और वो बोलती रहती है, और ऐसे बोलती है जैसे ये ओरिजिनल बोल रहा हो। जीव सत स्वरूप से जीव आत्मा में प्रकाश कर दिया कर देते हैं, और फिर वह मनुष्य अपने मुख से उच्चारण करके दूसरों को सुनाता है। इसलिए यहाँ दोष नहीं। फिर प्रश्न किया कि किन के आत्मा में कब वेदों का प्रकाश किया, तो यहाँ उत्तर दिया महर्षि जी ने कि प्रश्न प्रथम तो सृष्टि के आदि में परमात्मा ने अग्नि वायु आदित्य और अंगीरा ऋषियों की आत्मा में एक एक वेद का प्रकाश किया। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब 217 पे क्या बताया, इस प्रश्नकर्ता ने कहा कि फिर तो जैसे भगवान ने ज्ञान दे दिया चारों वेदों को, चारों ऋषियों को उन वेद बोल लिख दिए होंगे। ने बोला नहीं, प्रश्न देखो, ईश्वर ने उन थोड़ा पीछे कर दे करते शब्द कर, प्रश्न ईश्वर ने उन ऋषियों को ज्ञान दे दिया होगा और उस ज्ञान से उन लोगों ने वेद बना लिए होंगे। प्रश्नकर्ता कहता, महर्षि जी कहते नहीं, उन्होंने नहीं बनाई, वो तो भगवान बोला उनके अंदर, वो भूत की तरह प्रेतवत काल बढ़कर प्रवेश करके ब्रह्म ज्योत निरंजन और चारों ऋषियों में एक एक वेद बोल दिया। उत्तर क्या, ज्ञान गे के बिना नहीं होता। अच्छा आगे देखो, इन ज्ञान पूर्वक इन छंदों का निर्माण करना बिना सर्वज्ञ के किसी की समर्थता नहीं है, यानी ऋषि नहीं बोल सकते, ये तो समर्थ ही बोल सके और इस प्रकार सर्व ज्ञान युक्त शास्त्र को बना सके, यानी ना कोई ऋषि में ताकत, वो ना बोला अंदर बढ़कर, ये कुछ नहीं बना सकते, वो तो आप ही बोले। और यहाँ हाँ इतना है कि वेद पढ़ने के पश्चात व्याकरण बना ली। अब ये भी सोचना होगा, अगर कोई व्याकरण अड़ाकर बैठा, व्याकरण ठीक नहीं, व्याकरण ठीक नहीं जचती, इसे सरलार्थ ठीक नहीं हो रहा जो इन्होंने किया, पहले हमने वेदों को मानना पड़ेगा, क्योंकि भाषा पहले व्याकरण बाद में बनी। स्वयं स्वीकार करते हैं कि उन्होंने वेद पढ़ने के पश्चात व्याकरण निरुक्त और छंद आदि तो बना लिए, ऋषि मुनियों ने विद्याओं का प्रकाश करने के लिए किए हैं, यानी ऋषियों ने, इन चारों ऋषियों ने ये व्याकरण विकरण तो अपने लेवल तो बोली है, लेकिन वो वेद तो इस ब्रह्म ने अंदर प्रवेश करके बोली। वे इसलिए वेद परमेश्वरों उक्त हैं, भगवान के द्वारा कहे गए हैं, उक्त माने बोले गए, ये परमेश्वरों उक्त हैं, परमात्मा के द्वारा बोले गए, सीधी सी ठीक है। अब परमात्मा ब्रह्म है। अब फिर देखो 225 पृष्ठ पे इनसे फिर प्रश्न किया कि भगवान को आप नाकार मानते हो या निराकार, ये उत्तर देते हैं कि निराकार। ये देखो प्रश्न नंबर 25 पे, 225 पे, अब तीसरी बार भी कह रहे हैं ईश्वर साकार है व निराकार, ईश्वर निराकार है। अब आपने देखा कि अग्नि शब्द, इन्होंने कहा कि जहां अग्नि शब्द है वो परमेश्वर का बोध समझना, और साथ में जब ऋग्वेद को इन्होंने भाषा भाषा प्रारंभ किया तो विशेष हिदायत दी है कि जहां अग्नि शब्द हो। वैसे तो अग्नि का आम बालक बता दे आग, और संत ऋषि ही बताया करते हैं आध्यात्मिक वर्डों को, शब्दों को उसका विशेषण विशेष ढंग से समझा। उन्होंने ऐसे समझा कि जहां पर अग्नि शब्द वेद में मिले और जिसकी ये स्थिति हो, जैसे जहां अग्नि का आग शब्द बनेगा वो तो अलग से दिखेगा, अर्थ बनेगा, जहां परमेश्वर शब्द बनेगा वो तो अलग दिखेगा। जैसे पुरुष है, और पुरुष पहला तो परमात्मा का नाम है पुरुष, पुरुष माने प्रभु, क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया। फिर सेकंड नंबर पर पुरुष माने व्यक्ति होता है, मनुष्य पहला अर्थ पुरुष का परमात्मा होता है। ऐसे समझना, अग्नि का वास्तविक अर्थ तो परमेश्वर है, और फिर उसी ने इस अग्नि आग आदि यानी बनाई भौतिक, तो फिर उसको अग्नि भी कहते हैं। अब देखिए ऋग्वेद मंडल प्रथम महर्षि दानंद जी के कर्कमों द्वारा ही इसका भाष्य प्रारंभ इन्होंने क्या, उसमें ये स्पेशल हिदायत दी है कि ये महर्षि दानंद सरस्वती कि अग्नि शब्द को परमेश्वर समझना जहां अग्नि मिले। और वैसे अग्नि माने आग तो वो स्वाभाविक सरलार्थी बता देगा, इसका आग बनता है, वहां तो आग भी लिखना पड़ेगा, अग्नि भी लिखना पड़ेगा या उसका कोई और भी। और ये कहां से प्रकाशित है, प्रकाशक है सर्व देशी कार्य प्रतिनिधि सभा 3/5 मेरसिदान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली इतने। और इसमें बिल्कुल प्रारंभ में मेरिस जी कहते हैं कि जब सरलार प्रारंभ के अग्नि शब्द से प्रारंभ होता है, ऋग्वेद अथ ऋग्वेद भाषा भाष है, अग्नि ये अग्नि ईमेल अग्नि शब्द से प्रारंभ होता है, इसके लिए व्याख्या दी इन्होंने। ये प्रथम मंडल प्रथम ही सूक्त और प्रथम ही मंत्र है इसका। इसमें क्या लिखा है, स्पेशल हिदायत दी है कि यहां अग्नि शब्द के दो अर्थ करने में प्राण है, प्रमाण है कि इस ऋग वेद के मंत्र से जानना जाता है कि सद ब्रह्म एक सद ब्रह्म, ब्रह्म माने तो ये भगवान माने, और सद ब्रह्म माने सच्चा भगवान, एक झूठा हो गया एक सच्चा हो गया, दो हो गए। आप अपने आप देखो सद ब्रह्म का अर्थ होता है, जैसे हम सत्साहिब कहते हैं अविनाशी परमेश्वर, सच्चा भगवान अविनाशी परमेश्वर हरेक ब्रह्म। अब ये हरेक पॉइंट पर सोचकर तब चलेंगे तब हमें ये सारा जटिल समस्या समझ में आई। ये कोई बड़ी बात नहीं है, अगर शिक्षक ठीक हो ना स्टूडेंट तो वही दिमाग आजकल के ज्यादा पहले से अपने में और तुरंत पकड़ जाएंगे। इनसे किसी ने पूछा कि तुम परमात्मा, आगे बताएंगे, एक सद्ब्रह्म यानी सच्चे, एक तो ब्रह्म हो गया और एक सद्ब्रह्म, सद्ब्रह्म दूसरा हो गया, ब्रह्म कोई और है, एक सत्ब्रह्म सच्चा ब्रह्म, एक झूठा ब्रह्म यानी नाशवान ये अविनाशी ब्रह्म। एक सद्ब्रह्म के इंद्रादि अनेक नाम है तथा इस यजुर्वेद के मंत्र से अग्नि और आदि नाम से करके सचिदानंद घन का लक्षण वाले ब्रह्म को जानना चाहिए। अच्छा आगे देखो, अग्नि शब्द के मैं अग्नि शब्द के प्रजा शब्द करके इस मंत्र में इस प्राण प्रमाण में अग्नि शब्द के प्रजा शब्द करके भौतिक और प्रजापति शब्द से ईश्वर का ग्रहण होता है और इस व्रत का प्रजापति परमेश्वर है। इस ऋग्वेद के प्रमाण से ज्ञान वाले तथा सर्वज्ञ प्रकाश करने वाले विशेषण से अग्नि शब्द भी करके ईश्वर का ग्रहण होता है। आगे देखो ये हो गया ना, अग्नि शब्द हो तो समझो परमेश्वर ईश्वर ही समझो, भगवान समझो। और इन्हें स्वयं भी इसमें ऋग्वेद को जब सरलार्थ किया है तो ये देखो अग्नि माने परमेश्वर लिखा, अग्नि माने परमेश्वर। और यहां देखो नीचे ये 4 नंबर में अग्नि माने, अग्नि माने परमेश्वर। और इन्हीं की इन्हीं के निर्देश से और इसी को इसी आधार पर इसी पैटर्न पर इन्हीं के जो अनुयायी हैं उन्होंने अनुवाद किया है श्याम वेद का, वो दिखाते हैं आपको। देखिएगा श्यामवेद और यजुर्वेद, यजुर्वेद तो महर्षि दानंद जी का अपने करकमलों द्वारा पूरा ही है और यज्ञवेद का इन्होंने आधा किया था, आधे ऋग्वेद का फिर इनकी अपने चले गए शरीर छोड़कर। ये देखिए ये कहां श्याम, ये श्यामवेद और यजुर्वेद दोनों इकट्ठे जल्द किए इन्होंने। अब इसमें ये कहां से प्रकाशित है ये देखो पहले, प्रधान कार्यालय दयानंद संस्थान, वेद मंदिर महात्मा, वेद भिक्षुक सेवा आश्रम, पोस्ट मुखमेलपुर दिल्ली। इसमें श्यामवेद जो लिखा है वो इस महर्षि दयानंद जी के यानी मृत्यु के उपरांत इन्हीं के दिए गए हिदायतों यानी आधारों से इसका सरलार्थ किया। तो इसमें क्या लिखा है, शुरुआत में अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर अर्थात ये समझना वेद में जहां अग्नि शब्द लिखा है वहां परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर ये प्रथम मंत्र। दूसरे में अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने ईश्वर को, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने ईश्वर, अग्नि माने ईश्वर, अग्नि माने परमेश्वर। ये देखो इधर साथ ही है, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, और देखो अग्नि माने हे परमेश्वर। इसमें गलती नहीं, कितनी जगह पर अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर। और इसी में देखो महर्षि दयानंद जी जब यजुर्वेद, क्योंकि ये परमात्मा निराकार मानते हैं और इसमें यजुर्वेद कहता परमात्मा सह शरीर है, इन्होंने अपनी छोरी को अपने दिए हुए विचारों को सत रखने के लिए ऐसा दास को लगता है कि जानबूझ कर इन शब्दों के अर्थ भी छोड़ दिए। अर्थ यजुर्वेद भाषा भाषे, ये प्रथम मंत्र प्रथम अध्याय है, प्रथम अध्याय प्रथम मंत्र यहाँ से। अब देखो इसके 14 नंबर अध्याय पर 15 नंबर श्लोक में आप देखिएगा, इसमें आता है कि परमात्मा सह शरीर है। ये देखो अग्ने तनुरसी, अग्ने माने परमेश्वर होना चाहिए था, अग्ने स्पष्ट है और तनु माने शरीर, रसी माने है, परमात्मा सह शरीर है। अच्छा इन्होंने क्या किया, इन 12 शब्दों का अर्थ ही रहा इनमें, आप देखिएगा ना, तो अग्ने तनुरसी विश्वाचो विसर्जने, ये इनका कोई अर्थ नहीं, जो गोलदार है ना सुसिम और ये सह इदम और यहाँ इसका दो शब्द, ये 12 शब्दों का अर्थ अभी तक नहीं है। ये 125 वर्ष 24 वर्ष हो गए इस वेदों का सरलार्थ और छपों को, अब देख लो इसमें कहीं भी नहीं है। मैं जन हितों जग हित अभी पदार्थों के संस्कार के लिए, अब देखो अग्नि कहीं पर भी अग्नि शब्द ब्रैकेट में, ये संस्कृत है, कहीं पर भी ब्रैकेट में संस्कृत अग्नि नहीं मिले, अग्नि देख लो और तो बाद में देखेंगे, अग्नि शब्द नहीं है कहीं पर भी, पीछे करके देखो एक ही बार पूरा बस। अब अश्वम यहां देखिए, इधर यहां लिखते अग्नि माने परमेश्वर 17 में और इधर देखो 18 में अग्नि माने परमेश्वर, और फिर इसी के पांचवें श्लोक में, पांचवें अध्याय के प्रथम श्लोक में फिर आता है कि परमात्मा सह शरीर है। ये देखो यहां ये शुरू हो गया, अथ पंचमो अध्याय आरंभ, इसमें दो बार आ गया अग्ने तनुरसी विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी, विष्णु माने थे भगवान मानते ही वहां लिखा था, और सोम माने भी जगदीश्वर, इन्हीं की करकमलों से देखिएगा 35 नंबर श्लोक में ये सोम माने हे जगदीश्वर लिखते, इसी पांचवें अध्याय के ये देखो मंत्र नंबर 35 में हे सोम, सोम माने ऐश्वर्य देने वाले जगदीश्वर, और सोमस्य हो जाए तो सोम अमर, अमर पुरुष का, सोम माने अमर, जो अमर पुरुष सदा रहने वाला परमात्मा, सोम माने जगदीश्वर यानी भगवान मानते हैं ये। और यहाँ क्या लिखा है ये देखिए, अब देखो इसको, ये सोमस्य, सोमस्य यानी सोम का, सोम माने जगदीश्वर का, तनु माने शरीर, असी माने, अब देखो दास ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मत ये देख रहा हूँ कि देखो यहाँ तनु माने शरीर ये कह ही रहे हैं, असी माने है और अग्नि माने परमेश्वर 100 जगह लिख रहे, क्या फिर कसर के रहेगी, यहाँ देखो ऊपर देखो अग्नि माने अग्नि तनु असी, परमात्मा सह शरीर है, इसने 8वीं क्लास भी जो पास हो ना कि संस्कृत कर रखी हो वो भी समझ जा, अरना तो जमा कति इस संस्कृत के जोड़ तोड़ को देखकर आम व्यक्ति बालक भी समझने लग जाएगा। विष्णवे, विष्णु माने सर्वव्यापक परमात्मा, सर्व पालन करता परमात्मा, तवा माने उस, अब तवा माने स्वयं उस लिखते, तवा माने उस, अब यहाँ तवा को उस ला दे, उससे पालन करता अमर पुरुष का, अमर भगवान, अमर जगदीश्वर का, तनु माने श्री रसी माने, दो बार लिखा जैसे पवित्र भाई ने लिखा, पीछे करिए यहाँ देखो अग्नि तनुरसी परमात्मा सह शरीर, अग्नि माने परमेश्वर, तनु माने शरीर, रसी माने है, परमात्मा सह शरीर है, तनु माने शरीर आप ही मान रहे हैं, तनु शरीर, रसी माने है, और यहाँ अग्नि की जगह परमेश्वर लिख दे, परमेश्वर सह शरीर है, वेद भाषा बोल रहा हूँ, वेद भाषा में जो वेद बताना चाहते हैं, और विष्णु तवा सोमस्य तनुरसी, विष्णु माने सर्व पालन करता, उस सर्व पालन करता, सोमस्य माने अमर पुरुष, सत्पुरुष का, अकाल मूर्त का, अमर माने जो, सो माने जो कभी खत्म ना हो, अमर, उस अमर पुरुष का शरीर है, उस अकाल मूर्त का शरीर है, सब स्वरूपी राम का शरीर है, सोमस्य माने सत्पुरुष का सभी शरीर है, अमर सो माने कभी खत्म ना होने वाला अमृत रूप, अमर उसका शरीर। अब इन्होंने क्या संस्कृत अनुवाद किया ये देखिए, हे मनुष्यों, तुम लोग जैसे जो हवी, अब यहाँ अग्नि माने बिजली कर दिया, बिजली प्रसिद्ध रूप अग्नि के शरीर के समान है। बताओ भाई, बिजली हवी से अग्नि के शरीर के समान, इसकी वजह से सेंस भी कुछ ना बनती, कोई अर्थ सरल अर्थ बनता हो तो उसने सोच लिया आदमी बेचल के मुक्त ठीक लगा होगा, हमारे तो सुन बन गया। अब यहाँ लिख देते अग्नि तनु रसी माने सह शरीर है बस तास किए, अगर ये सोच गलत है तो वो सोचने वाले की अपनी कमजोरी है, क्योंकि सामने गाय हो और नो का मैं तो ना मानता गाय ने ना माने फिर इसका क्या इलाज है, ये तो कोई इलाज नहीं उसका कि हम तो नहीं मानते क्योंकि हम तो निराकार मान चुके हैं, ये तो कोई बात नहीं क्योंकि नहीं बनती। अरे भी कहते हैं शास्त्रार्थ, ये शास्त्रार्थ हो रहा है, पहले शास्त्रार्थ क्या होता था, और एक संत इधर बैठ जाता एक इधर बैठ जाता, अपने अपने सट्टे लाकर उठ जाते, और फैसला किसने करना, जो जनता अनबोल जिसने आप ज्ञान नहीं है कहना क्या चाह रही, अब वो ज्यादा ताड़ी बीज दे पीट दे पहले उसकी विजयी, और चाहे सच्ची बात कहने वाला बेचारा वो, क्योंकि जो होता है ना चतुर वो स्लोगने जाने, चतुरता से बोल रहे धारावाहिक प्रवचन कर दे, संस्कृत बोलने जा बोलता रहे, अरे भोली आत्मा उसने वाह भी क्या विद्वान पढ़ा है, अब फैसला ये करे आम संग दिन आप ज्ञान नहीं बेचारों को, तो ये दास पहले आपको शाणा करेगा, आप सोचो आप समझो कि ये वेद क्या बता रहे हैं, और फिर आप पता लग जाएगा कौन के बोल रहा है। अब देखो ये तो सिद्ध हो गया कि परमात्मा सह शरीर है, वेद यानी निराकार बताने वालों की ही कर कमल से ये हो गया कि परमात्मा सह शरीर है और मानुष सदृश है। आगे देखो उसका नाम क्या है, इसी पांच में जाके 32वें श्लोक में आप देखो उसका नाम कबीर है, और वो कहाँ रहता, वो सतलोक में रहता, जैसे गीता जी बताओ थी वो सनातन परम धाम, और ये लिखते हैं रत धाम, रत माने सत, सत धाम, ये सत धाम बताते हैं वेद, वेद उसे सत धाम बताता है, ये है यजुर्वेद भाषा भाषे पंचमोध्याय, नीचे देखिएगा 32वां श्लोक, 32वां मंत्र देखें, कबीर उसी गसी कबीर अंगारी असी, उसी गसी कबीर अंगारी असी, कबीर माने कबीर, अंगारी माने पाप कर्मों को काटने वाला, और असी माने है, आपके सामने है कबीर अंगारी। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता जी में आपने पढ़ा कि जो परम शांति दायक है, जो परम शांति दायक है वह कबीर अंगारी माने पाप कर्मों का काटने वाला, बमबारी माने बंधनों का शत्रु। यहां देखो अंगारी माने खोटे चलन वाले जीवों के शत्रु, यहां लिखना था अंग माने पाप, अरी माने दुश्मन, पापों का दुश्मन, पाप काटने वाला, और बमबारी माने बंधनों का शत्रु, हम कहते हैं उसे बंदी छोड़, जो बंधन काट दे काल की बंध से छुड़वा दे, हम उसे बंदी छोड़ कहते हैं, वो बंदी छोड़ बमबारी माने बंधनों का शत्रु, इसमें हम बताते हैं ये बात तो इनकी अपने अलग से सोच इसको उलझाने के लिए की, बाकी है बमबारी माने बंधनों के शत्रु, जो बंधन काट दे, और फिर क्या है वो कौन है, इन्होंने क्या कर दिया, ये लिख दिया कबीर, ये कवि लिख दिया, और इसको हम लिखते हैं छोटा रह लाकर अनंत लगा दें कबीर हो जावे, क्योंकि यहाँ ऊपर देखो कबीर लिखा नहीं, तो ये यहाँ लिखने की रे लिखने की क्या जरूरत थी कबीर के साथ, संस्कृत में भगवान ने कबीर। अब जैसे यजुर्वेद है, अच्छा ये कहाँ आगे समझाऊंगा देखेंगे, वो तो आगे लिखा है कि वो परमात्मा रत धामा सत धाम युक्त है, सतलोक में रहता है, वो कबीर परमात्मा जो है सत धाम युक्त है, असी माने है, सत धाम सनातन धाम, सतलोक सचखंड अमर लोक अमर धाम, उसी के पर्यायवाची नाम है, ये सनत धाम में है, और वो स्वर स्वर ज्योति स्वयं प्रकाशित है, उसका शरीर स्वयं प्रकाशित है, स्वर ज्योति संस्कृत जानने वाले अपने दृष्टि देख सकते हैं। अब क्या हो गया, क्या बताया कि परमात्मा सह शरीर है और वो जनराट है, जनराट माने मनुष्य जैसा तेजोमय शरीर है उसका, इसी के पांचवें अध्याय में लिखा है 36वें श्लोक में कि वो जनराट है मनुष्य जैसा है और वो तेजोमय शरीर है। अब देखिए फिर इनसे प्रश्न किया किसी ने सत्यार्थ प्रकाश में कि तुम परमात्मा को एक मानते हो या दो, परमात्मा एक है या अलग है, इन्होंने कहा नहीं वेद में कोई ऐसा प्रमाण नहीं जिसे अनेक परमात्मा सिद्ध हो। ये देखिएगा सत्कार प्रकाश अर्थ सत्यार प्रकाश है। महर्षि दान सरस्वती स्वामी विरचित वैदिक पुस्तकालय दानंद आश्रम के सरगंज अजमेर। इसके प्रथम समोल्लास में इसके सप्तम समोल्लास में पूछा है कि परमात्मा एक है व अनेक। ये देखो एक सौ ये सप्तम समोल्लास में किसी ने प्रश्न किया महर्षि जी से कि प्रश्न है कि वेद में ईश्वर अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो वा नहीं? उत्तर, नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं यह नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों। ये ध्यान रखना, अभी इसे इन्हीं की करकमल द्वारा दिखाऊंगा, किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है। अब देखो ये क्या बताते हैं, प्रथम समोल्लास में ही भगवानों भगवान की व्याख्या करते आ रहे हैं। परमात्मा किसे कहते हैं? अब देखो ये प्रथम समोल्लास नीचे देखो, तीन परमात्मा इन्हीं की कलम से दिखाते हैं। ईश, ईश्वर, परमेश्वर, ब्रह्म, परब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष, और फिर गीता जी में दिखाऊंगा और ऋग्वेद में दिखाऊंगा तीन परमात्मा न्यारे न्यारे। अब क्या है, ईश ऐश्वर्य वर्तते, ये देखो यहां इन्होंने ये शब्द नहीं लिखे, ये दोनों छोड़ दिए, वेद मंत्र है कि ईश ऐश्वर्य वर्तते स ईश है, वो तो ईश है, ईश माने मालिक, ये ब्रह्म है, ईश्वर ये परब्रह्म है, और परमेश्वर जो है पूर्ण ब्रह्म है। अब देखना, अब ये तो कि इस धातु से ईश्वर शब्द शब्द होता है, और देखो ये इष्टे सर्वे ऐश्वर्यवान वर्तते स ईश्वर है। अब ये तो ईश है, यहां इन्होंने ये तो देखो वेद व्याख्या पूरा लिख दिया, ये वाला ये इष्टे ऐश्वर्यवान वर्तते स ईश्वर है, ये तो पूरा लिख दिया, ये छोड़ दिया, क्योंकि यहां पर लिखा कि वह ईश है, ईशे ईश ऐश्वर्य ऐश्वर्य वर्तते स ईश। क्या लिखा है कि इस धातु से ईश्वर शब्द का सिद्ध होता है, और ये इष्टे सर्व ऐश्वर्यवान वर्त, ये तो ऐश्वर्यवान, ये सर्व ऐश्वर्यवान, ये तो साधारण सुखदाई, ये और इसे घना सुखदाई, साधारण सुखदाई तो ईश है, ब्रह्म है, और सर्व ऐश्वर्यवान या ज्यादा सुखदाई वो ईश्वर है, जिसका सत्य विचार शील ज्ञान और अनंत ऐश्वर्य है, इससे उस परमात्मा का नाम ईश्वर है। अब दो हो गए ईश, ईश और ईश्वर दो हो गए। अब तीसरा देखो, ये देखो 26 पृष्ठ पे इनके क्रम इधर देखना, ये समोल्लास नंबर प्रथम 26 पृष्ठ पे समृद्ध ऐश्वर्यवान नाम ईश्वर का, ये दिन के अपनी सोच। अब देखो वेद मंत्र देखो, ये ईश्वरेशु ईश्वरेशु समर्थेशु परम श्रेष्ठ है, होय होय जो ईश्वरों से भी समर्थों से भी परम श्रेष्ठ है सह परमेश्वर है, होय होय वो परमेश्वर है, एक साधारण सुख देने वाला तो ईश्वर है, ईश है, और उससे ज्यादा सुख देने वाला ईश्वर, और ईश्वरों से ईश्वरों शब्द नहीं लिखना चाहिए था महापुरुष ने, ईश्वरों सब अगर एक ईश्वर है तो अपनी कलम से ईश्वरों से यानी गणेश्वर हो गए, ईश्वरों से अर्थात समर्थों से, मैं समर्थ जिसके तुल कोई और नहीं भी नहीं है उसका नाम परमेश्वर है। तीन भगवान आप लिख रहे, ईश ईश्वर और परमेश्वर। ये फिर देखो, ये ईश्वरेशु ईश्वरेशु मन ईश्वरों से भी सब ईश्वरों से, और समर्थेशु उन सब ईश्वरों समर्थों से भी परम श्रेष्ठ है, वो अति श्रेष्ठ है स परमेश्वर, वो तीसरे नंबर का भगवान परमेश्वर है। और फिर इसी में बताया है कि उसका नाम क्या है वास्तव में, वो कबीर ईश्वर है। देखो ये देखो सब वही समोल्लास चल रहा है, प्रथम समोल्लास प्रश्न नंबर 35, ये 34 है या 35 पर देखो नीचे, को शब्द इस धातु से कवि शब्द सिद्ध होता है, और यह कौती शब्द यति सर्व विद्या सह कबीर ईश्वर है, वह इसलिए उस पर वो कबीर ईश्वर है जिसमें सारे गुण है, पूर्ण परमात्मा है, सब विद्या का जानने वाला, सारी सृष्टि का रचनहार, सह कबीर ईश्वर है जो वेद द्वारा सब विद्याओं का उपदेष्टा और वेता है, इसलिए परमेश्वर का नाम कबीर है। ओए होए, वो परमेश्वर जो है ना तीसरे नंबर का भगवान, उसका नाम इन्होंने कवि लिख दिया, और यहाँ कबीर है, देखो रह सब लगा है, यहाँ कबीर लिखना था, वो कबीर परमेश्वर है, सारा झंझट मिट गया था। अब इन्होंने इसको कवि क्यों लिख दिया, इसका थोड़ा सा और विवेचन करना होगा। अब जैसे ये यजुर्वेद है, ये यजुर्वेद है, ये रह है ऊपर छोटा आधार है, और मान ले इसको हम हटा के इसको यजु लिख दिया लगते हैं, जैसे इसमें इन्होंने कबीर का इसी, ये भी उन्हीं के द्वारा यजुर्वेद सरलार्थ है। ये दास तो अपनी एक शंका समाधान चाहता है, अगर ऐसा हो जाए तो कोई बुरा तो नहीं है। ये देखो, ये यजुर्वेद के 32वें श्लोक में, ये वही उन्हीं के द्वारा टीका है, ये वेद वो बड़े बड़े उसमें लिखा, साइज में ही छोटे में, उसी गसी कबीर अंगारी असी, इन्होंने इस कबीर का शब्द यहाँ कवि कर दिया, अपसर्ग लगा कैसे छोड़ दिया, जैसे पुनर्जन्म या पुनः लिखा तो अभी पुनर् ही बोला जाए, इसको कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए इस यजुर्वेद के ये अपसर्ग ऊपर का रह हटा दे और इसमें दो बिंदी ला दी, तो फिर भी इस पवित्र पुस्तक का ही बोध होगा, क्योंकि इसके गुण गाए जा रहे हैं, जो जो सर्वशक्तिमान है, सब सृष्टि का रचनहार है, और इसलिए उस परमेश्वर का नाम कबीर है, उसका नाम अवास्तव, उसका नाम कबीर है, ये होना चाहिए। जैसे हम यजुर्वेद की महिमा गाते हैं कि एक यज्ञ सतुतियों की बहुत ही अच्छी रचनाएं हैं, बहुत ही अच्छा निर्मल ज्ञान है प्रभु के बारे में, सबके जानने योग्य है, सबके पढ़ने योग्य है, बहुत अच्छा पुस्तक है, और ये लिखे नहीं, वो यजुर्वेद है, और यजु आवे, यजु का अर्थ होता है यज्ञ सतुतिया, वहां लिख दे यजु माने यजु कर दे, और यज्ञ माने यजु, यजु लिख कर छोड़ दे मान ले कि वो यजु है, तो वो यजु लिख देंगे तो भी इस पवित्र शास्त्र का बोध ही होगा कि वो यजुर्वेद है, अंडरस्टूड है, यानी बालक तो बालक समझ जा। मान ले यजु लिख दिया, अपसर काट भी दी, फिर कर दिया वो यजु है, तो यजु के होया फिर, वो कौन है वो यजु, वहां लिखने का वो यजुर्वेद है जिसमें ये सारी महिमा गाई थी, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर है, वो परमेश्वर है, उसका नाम परमेश्वर है, तो वो परमेश्वर का नाम कबीर है, इसलिए वो लिखना पड़ेगा, चाहे वो अपसर्ग भी ला रखें। ये देखिएगा, ये परिभाषा प्रभु की आप लीजिएगा, 30 रूपये में आपको मिलेगी और इसमें आपको निर्मल ज्ञान मिलेगा। आप देखो यहां से प्रारंभ होता है, अब यहां ऊपर देखिए, मान लीजिए ऊपर देखो, अब जैसे कोई दूध की महिमा संस्कृत में लिख दे और उसे सरलार्थ करे, पौष्टिकार असी, पेय पदार्थ असी, श्वेत असी, अमृत उपमा, सर्व मनुषा नाम पेय भय सत्वम दुग्धसी, अब दूध की महिमा गावे, सबको पीना चाहिए और सब कुछ ऐसे करना चाहिए, और फिर जहां दूध लिखना उड़क है जो सफेद सफेद है, तो सफेद सफेद ने क्या ढूंढा, वहां लिखना पड़ेगा वो दूध है। यहां देखो ऐसे जैसे दास का, अब यहां क्या लिखा है, जब यजुर्वेद की महिमा कहें कि प्रभु की यज्ञ स्तुतियों का भंडार है, बहुत अच्छी विधि वर्णित है, एक अनमोल जानकारी है, और वहां लिख दें कि लिखा हो यजुर्वेद है, बल्कि लिख दें कि यज्ञ स्तुतियों का ज्ञान है, तो उस पुस्तक को कैसे पाया जा सकता है। अब मान ले यजु भी लिखेंगे तो भी उस यजुर्वेद का बोध होगा, इसलिए लिखना होगा कि वह यजुर्वेद है जो पवित्र यज्ञ स्तुतियों का स्रोत है। अब यजुर्वेद की संधि छेद करके लिखें तो यजुर्वेद लिख दें तो भी वह बात है और इसी पवित्र पुस्तक का बोध है, और यजुर्वेद लिख दें तो भी इसी पुस्तक का बोध है। बताओ अब इसको यजु लिख दे, जैसे उस कवि उन्हें कवि कर दिया, यजुर है यो, यजुर बोलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि संस्कृत तो ना व्याकरण बाद में बनी और भगवान ने ये पहले बनाई, तो ये यजुर ही है, ये व्याकरण के आधार पर इन अवसर घटा दी तो ये इनकी ये नहीं मान्य होगी, क्योंकि ये परमात्मा की वाणी। आप कहते हैं कि ऋषियों ने, और इसी प्रकार आप कहते हैं कि ऋषियों ने तो व्याकरण व्याकरण बनाई, भगवान ने वेद बोले, तो भगवान के द्वारा बोले ठीक है, व्याकरण में कमी हो सकती है। तो अब देखो ठीक इसी प्रकार चारों वेदों में लिखा है कि वह कबीर देव कबीर साहिब है जो सर्वशक्तिमान जगत पिता सर्व सृष्टि रचनार कुल मालिक तथा पाप कर्म काटने वाला अंगारी मैंने पाप कर्म काटने वाला और काल की कारागार से छुटवाने वाला यानी बंदी छोड़, वो बंदी छोड़ है, वो कबीर है। और यहाँ जिसको कबीर देव लिखे तो भी कबीर परमेश्वर का बोध है, और ऐसे लिखेंगे तो भी इस परमेश्वर का बोध है, माने कबीर लिख कर छोड़ दिया तो भी इसी भगवान को की तरफ संकेत है और कबीर परमेश्वर का बोध है। अब देखो ये नहीं समझना दास किसी को हीन बताना चाहता नहीं। देखो जिन महापुरुषों ने जितनी प्रयत्न किए हैं उनका परमार्थ ही दृष्टिकोण रहा है, गलत नहीं रहा, ना कोई स्वार्थ रहा, लेकिन जब उनको आप ही पूर्ण ज्ञान नहीं था तो मार्गदर्शन करना भी मेरी दृष्टि में जो है ठीक नहीं। क्यों? जैसे कोई कई भक्त कहते हैं जी कुछ तो ये संत बता ही रहे हैं, कुछ तो मार्गदर्शन करते ही हैं, भक्तों को अच्छा रास्ता देते हैं। अच्छा दे दें तो फिर झगड़ा को नहीं। अब